Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Mawlana Muhammadin Khatamin Nabiyyin Wa Imamil Mursaleen Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa ala kulli man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Amma ba'd حضرات اساتذہ کرام معزز حاضرین میرے عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آج کی یہ محفل درحقیقت میری خواہش کا نتیجہ ہے کہ وفاق المدارس العربیہ کے نئے انتخاب اور تنظیم نو کے موقع پر میرے انتہائی عزیز اور مکرم بھائی حضرت مولانا محمد حنیف جالندری اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے وہ کراچی تشریف لائے اور کل میں بھی ان کے ساتھ جامعہ اسلامیہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن حاضر ہوا اور پھر جامعہ فاروقیہ کی دونوں شاخوں میں بھی کل ہمارا جانا ہوا ہر جگہ مولانا نے اپنا خطاب کیا اور کچھ مجھے بھی معروضات پیش کرنے کا موقع ملا تو میں نے مولانا سے کہا کہ بھائی جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن اور جامعہ فاروقیہ اس کی دونوں شاخیں اور آج مولانا گئے تھے اشرف المدارس اور ایک اور مخزن العلوم ایک اور مدرسے میں سارا دن بڑا مصروف گزارا ہے کل کا بھی اور آج کا بھی تو میں نے کہا سب سارے ادارے آپ سے مستفید ہو رہے ہیں تو ہمارا دارالعلوم کیوں محروم رہے تو اس لیے میں نے ان سے گزارش کی کہ تھوڑا سا وقت دارالعلوم کو بھی دیں تو انہوں نے ماشاءاللہ اپنی مصروفیت کے باوجود قبول فرما لیا تو آج کی محفل کے درقہ موضوع درحقیقت مولانا خانی محمد حنیف جالندری صاحب ہیں میں طلبہ سے اس لیے اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا کا پتہ نہیں کتنی مرتبہ دارالعلوم میں تشریف لائے لیکن کبھی طلبہ اور اساتذہ سے اس طرح بیٹھ کر بات کرنے کا کبھی موقع نہیں ملا اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے طلباء وہ تھوڑا سا ان کے بارے میں کچھ جانیں اور اپنی زندگیوں میں اس سے سبق حاصل کریں میں منہ پر تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہوتی لیکن اگر سبق لینا مقصود ہو سبق دینا مقصود ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا مولانا حنیف جالندری صاحب نے ہمارے لیے ہمارے طلبہ کے لیے ہمارے اہل علم کے لیے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے حضرت صدر دارالعلوم حضرت مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اپنی ذوف اور علالت کے باوجود میں نے درخواست کی تھی کہ اگر تشریف لے آئیں تو ہمارے لیے بڑی سعادت کا موقع ہوگا تو الحمدللہ حضرت نے قبول فرمایا اور تشریف لے آئے یہ اس مجلس کی بہت بڑی عظیم سعادت ہے तो मैं ये कह रहा था कि मौलाना हनीफ जालंधरी साहब ने दो हमारे माहौल में दो बड़े अजीब किस्म के रिकॉर्ड कायम किए हैं। एक ये कि यह जामिया खैरुल मदारिस जो हमारे बहुत ही मखदूम बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद साहब कद्दसल्लाहु ताला सिर्रहू का लगाया हुआ बाग है और पाकिस्तान के चंद गिने चुने उन मदारिस में से है कि सारी सारे पाकिस्तान में उसकी इल्मी हैसियत का एतराफ़ किया जाता है। हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हज़रत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, हज़रत के बाद वो मोहतमिम बने थे और जब उनकी वफ़ात हुई तो मौलाना खैर मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी बहुत कमसिन थे और उसी ज़माने में दौरे से करीब भी फारिग हुए थे। तो वहाँ खैरुल मदारिस की मजलिस शूरा ने बावजूद इनकी कम उम्री के इनको खैरुल मदारिस का मोहतमिम का ओहदा अता फरमाया और लोग बाज़ोकात भी समझते थे कि इनकी कमसिनी की वजह से वो खैरुल मदारिस के इहतमाम का हक अदा कर पाएंगे या नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस नौजवान से जामिया खैरुल मदारिस की अजीम खिदमत ली और उसको बेहतरीन तरीके पर चलाने का अल्लाह ताला ने इनको मौका भी अता फरमाया और उसकी तौफीक भी बख्शी। दूसरा रिकॉर्ड ये है कि जब विफाकुल मदारिस अरबिया के नाज़िम आला हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब कद्दसल्लाहु ताला सिर्रहू थे और सदर विफाक हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह की वफात पर हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब कद्दसल्लाहु ताला सिर्रहू को सदर बना दिया गया। हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के बाद हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस मेठी साहब रहमतुल्लाह अलैह सदर हुए थे और उस वक्त हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब नाज़िम आला थे और फिर हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब रहमतुल्लाह अलैह की वफात पर हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब कद्दसल्लाहु ताला सिर्रहू वो सदर वफाक बने और उस वक्त ये मसला खड़ा हुआ कि नाज़िम किसको बनाया जाए, नाज़िम आला किसको बनाया जाए। तो वहाँ भी मौलाना हनीफ साहब उस वक्त कमसिन थे और हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की निगाह इंतखाब इन पर पड़ी। लोग हैरान थे कि भई विफाकुल मदारिस में बड़े बड़े मामर हजरात भी मौजूद हैं, तजर्बाकार लोग मौजूद हैं, लेकिन हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का इसरार के साथ, मुझे याद है वो इसरार हज़रत का, तो उन्होंने इसरार के साथ कहा कि नहीं मौलाना हनीफ साहब होंगे। तो फिर दूसरी जिम्मेदारी भी इंतहाई कमसिनी के आलम में आई और अब विफाकुल मदारिस की खिदमत करते हुए इनको 40 साल के करीब 41 साल से विफाकुल मदारिस की खिदमत पर ये हैं नाज़िम आला के तौर पर और अपनी कमसिनी में भी हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब कद्दसल्लाहु ताला सिर्रहू के दस्तो बाजू रहे और विफाक को इंतहाई मुस्तहकम और मजबूत बनाने में और इसके निज़ाम को आला दर्जे का निज़ाम करने में अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे साया और उनकी निगरानी में इन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है वो हम सब की तरफ से इंतहाई काबिल मुबारकबाद और बहुत ही ज़्यादा دعاؤں کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور زیادہ برکتیں اور زیادہ ترقی عطا فرمائے. میں پہلے حضرت ہمارے حضرت صدر دارالعلوم حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی احمد رفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, اس وقت سے مسلسل وفاق میں پہلے مجلس عاملہ کے رکن کے طور پر, اس کے بعد پر نائب صدر کے طور پر وہ ہمیشہ وفاق میں کی خدمت انجام دیتے رہے, اور مولانا محمد حنیف جالندری رحمۃ اللہ جزاکم حفظہ اللہ تعالیٰ کے ان کی خدمات سے استفادہ کرتے رہے. میں اس سے پہلے کوئی مجلس عاملہ کا رکن بھی نہیں تھا میں, لیکن کبھی کبھی مجلس عاملہ مجھے دعوت خصوصی پر بلا لیا کرتی تھی, تو اس وقت میں ان کے خدمات کا کچھ پتہ بھی چلتا تھا, لیکن مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا. پچھلے دنوں جب مجھے صدر منتخب کیا گیا تو میں نے پہلا ملتان کا دورہ کیا ابھی دو تین دن پہلے, تو اس وقت جا کر میں نے وفاق کے دفتر کا معائنہ کیا اور اس کے مختلف شعبوں کو دیکھا کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ میں پہلے اتنا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے کس طرح اس نظام کو, حضرت یقیناً حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے زیر نگرانی اور ان کے زیر تربیت اور ان کی سرپرستی میں اور ان کی ہدایات کے مطابق کیا, لیکن عملاً شاید اس کو قائم کرنے میں مولانا محمد حنیف جالندری حفظہ اللہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے, بہت بڑا حصہ ہے. تو وہ مجھے دیکھ کر بہت دل بھی خوش ہوا اور اس بات کا اطمینان بھی کہ الحمدللہ یہ نظام اتنا مستحکم ہے کہ ہمارے جتنے تعلیمی بورڈ ہیں جو امتحانات لیتے ہیں, ہمارا یہ بورڈ الحمدللہ وفاق کا یہ نظم ان سب پر بھاری ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی کوئی نظیر ملنی مشکل ہے. اور اس میں تقریباً 41 سال سے ان کی خدمات ہیں, اور ان کی یہ مجھے سنایا کرتے ہیں کہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب در حقیقت وفاق کو ترقی کے راہ پر لگانے والے, وفاق کو وسعت دینے والے اور اس کو گاؤں گاؤں قریہ قریہ پہنچانے والے حقیقت میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور یہ ان کے دست راست تھے رہے ہیں. تو گاؤں گاؤں حضرت تشریف لے گئے ہیں اور وہاں جا جا کر مدارس کا الحاق کیا ہے, تو اس میں یہ ہمیشہ ان کے دست راست رہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ 40 سال کوئی معمولی مدت نہیں ہوتی. تو ایک مرتبہ یہ سنایا کرتے ہیں کہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو چونکہ ان کے ساتھ بے تکلف بھی بہت تھے, تو ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ حنیف تم نے میرا بڑھاپا خراب کر دیا, کہ بڑھاپے میں مجھے گھسیٹا کبھی گاؤں گاؤں کریا کریا کہاں کہاں لے گئے, تم نے میرا بڑھاپا خراب کر دیا. تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے میری جوانی خراب کر دی. تو وہ کہتے تھے کہ میرا تم نے بڑھاپا خراب کر دیا, اور یہ جواب میں کہتے تھے کہ حضرت آپ نے میری جوانی خراب کر دی. یہ جوانی جو کھیلنے کودنے کا زمانہ ہوتا ہے, جوانی جو مزے کرنے کا وقت ہوتا ہے, وہ وفاق المدارس کی تنظیم میں خرچ ہوا. اور یہ ان کی عظیم سعادت ہے کہ جوانی اس کام میں خرچ ہوئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز بھی عطا فرمایا اور یہ ریکارڈ بھی انہوں نے قائم کیا. میں طلبہ سے اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کام پر کمر بستہ ہو جاتا ہے اور اس اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے, اس پورے عرصے میں نہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وفاق سے کوئی تنخواہ وصول کی, ना मानस हनीफ जालिंदरी साहब ने, सारा काम रजाकार ना हो रहा है, सदर का भी और नाज़िम आला का भी। तो बगैर किसी दुनियावी दुनियावी मुनाफे के ये खिदमात इन्होंने 40 साल से ज्यादा अंजाम दी है। 40 साल में बच्चा जो है वो बुलूग अशुद तक पहुंच जाता है। तो अल्लाह ताला ने ये खिदमत इनसे ली, तो इसलिए हम जैसे तालिब इल्मों के लिए इनकी जो ज़िंदगी है और इनका जो काम है वो तलबा के लिए एक सबक है कि आदमी अपने इखलास के साथ जब दीन के काम के अंदर लगता है तो वो फिर अल्लाह तबारक व ताला उसकी इमदाद व नुसरत फरमाते हैं, उसकी दस्तगीरी फरमाते हैं। इसका मुशाहदा इनकी ज़िंदगी में किया जा सकता है। तो मेरा दिल चाहा कि ये आप हजरात से खिताब करें। और अजीब मसला यह है कि मुश्किल का कि जब ये इंतखाब हुआ नया, तो उससे पहले इनको दिल का दौरा हो गया था, हार्ट अटैक हुआ था, और पहले एक स्टेंट लगा इनके दिल में और अभी इंतखाब के बाद दूसरा स्टेंट लगा और ये दिल की बीमारी में है। डॉक्टरों ने इनको मना किया हुआ है कि बुलंद आवाज से ना बोला करो, और अल्लाह ने इनको खिताबत का शहसवार बनाया है, तो जब ये बात करते हैं तो उसके अपने ऊपर काबू नहीं रख सकते और नतीजा ये कि आवाज़ बहुत बुलंद हो जाती है, जोश पैदा हो जाता है। तो मैंने भी फिर इनको रोका था कि अब आप तकरीरें बंद करें 3 महीने के लिए। डॉक्टरों ने कहा है 3 महीने मजीद जो है वो बुलंद आवाज़ से ना बोलें। सबक भी पढ़ाते हैं माशाल्लाह बुखारी शरीफ का, और सबक के साथ फिर ये सारी इंतजामी जिम्मेदारियां भी हैं और जलसों में तकरीरें भी हैं। तो मैंने इनसे गुजारिश की थी कि आप ज़्यादा तकरीरें ना करें, 3 महीने की बात है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैदान खुला हुआ है। लेकिन खतीब जो है वो खामोश रहना उसका बड़ा मुश्किल काम है। तो जब उसको बोलने की दावत दी जाए, अभी ख़त्म नबूवत का अजीम शान कॉन्फ्रेंस थी मुल्तान में और इतना बड़ा अजीम मजमा था कि उसकी नज़ीर मिलनी मुश्किल है। मौलाना खुद फरमा रहे थे कि मैंने कासिम बाग मुल्तान के अंदर बहुत से बड़े बड़े जलसे देखे हैं मगर इतना बड़ा इज्तिमा मैंने आज तक नहीं देखा, इतना बड़ा इज्तिमा था। तो वहां भी मुझे खतरा ये था कि ये जब इस मजमे को देखेंगे तो इनका जोश व खरोश का आलम जो है वो दीदनी होगा। लेकिन इन्होंने बहरहाल मुझे इत्तला मिली कि बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त खिताब किया इन्होंने वहाँ पर। तो मैंने इनको पाबंदी भी लगा रखी थी और मैंने जब जामिया बिनौरी टाउन गया और जामिया फारूकिया गया तो वहाँ भी इनसे कहा कि भाई धीमा धीमे बोलना। तो एक तरफ मैंने खुद कह रखा है, दूसरी तरफ मैं दावत दे रहा हूँ कि भाई हमारे तलबा से खिताब करो। तो ये अजीब इज्तिमा ज़िद्दैन हो रहा था। लेकिन मैंने कहा भाई महरूम नहीं रहना, लिहाजा खिताब करें मगर धीमे धीमे करें, ज़्यादा जोश में ना आए, तो इंशाल्लाह जो फ़ायदा होगा वो पहुँच जाएगा अल्लाह के रहमत से। तो अब मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि हम सब से खिताब करें और अपने नसाए से भी, अपने तजर्बात से भी जो कुछ भी हमें फ़ायदा पहुँच सकता है अल्लाह तबारक व तआला इनके ज़रिए पहुँचाएँ। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में, अमल में तरक्की अता फरमाए। और हमारे लिए खुशकिस्मती बड़ी अजीम है कि हज़रत दामत बरकातुहुम इस महफिल में हमें महफिल को जीनत बख्शे हुए हैं। इनकी मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमा मुनक्किद हो रहा है। तो अब मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने इशादात से, अपने ख्यालात से मुस्तफीद फरमाए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ माशाल्लाह आज मौलाना हनीफ आज़मदारी साहब का बयान इतना जामे है कि अगर कोई वाकुल मदारिस की तारीख देखना चाहे देखना चाहे कि वाकुल मदारिस क्या है, क्यों है और क्यों अब तक बाकी था और अब इस हालत में तरक्की करके क्यों पहुंचा है, पूरी दास्तान इनके बयान में मौजूद है, हर बात इनके बयान में मौजूद है, तमाम बुजुर्गों के नाम असबर याद है सब, हर एक ने जो कारनामे अंजाम दिए वो सब इनके नाम मौजूद है। मेरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह फाकुल मदारिस में मैं नायब सदर था, मेरी कोच हामिला में यह रहती थी कि जब कोई इनके खिलाफ कोई मर खिलाफ आए बात और जो इंसाफ के खिलाफ होती थी मैं इंसाफ के खिलाफ कभी कभी तारीफ नहीं करता, लेकिन इंसाफ के खिलाफ होती थी तो मैं किसी की इंतज़ार नहीं करता था, सबसे पहले इस शख्स की तारीफ करता था। लोग मुझे ताना देते थे कि कोई मालूम करना चाहो किसी मुख्तलफ की बात में इनका क्या राय है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इनकी जो राय है वो इनकी राय है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से मेरा इनके साथ मामला रहा है, औलाद की तरह मेरा उनसे इनसे उस वक्त का ताल्लुक है जब ये तालीम बच्चों के मदरसे में तालीम हासिल कर रहे थे, कारी रहीम बर साहब के मकतब में कुरान शरीफ पढ़ते थे और मेरे साथ इन्होंने एक बड़े सफ़र में इस्तकबाल भी किया बकर जाने के लिए, मैं मुल्तान गया वहाँ से बकर जाना था, मैं उनको बुला नहीं सकता, बुला नहीं सकता, नहीं बुला सकता, कैसे बुलाऊँ, ये हमारी जान है। अब फाकुल मदारिस का अल्लाह ने इनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया है, नाज़िम आला बना दिया है, ये फाकुल मदारिस को अल्लाह ने बड़ा इनाम दिया है और इनको फाकुल मदारिस बतौर इनाम के दिया है, इस मुबारकबाद को कबूल फरमाए। मेरे बिरादर अजीज शेखुल इस्लाम तकी साहब, इनको तजब्बुर था कि मैं फिलहाल फाकुल मदारिस का नायब सदर हूँ, मैंने इनको बहुत ताकीद से कहा कर दूँ इस अहदे को कबूल कर लो, वरना फाकुल मदारिस फितनों से कभी बर्बाद कभी ख़त्म नहीं होगा, तमाम फितने बढ़ते रहेंगे, खुदा के लिए आ जाओ। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, इन्होंने दारुल उलूम की नायब सदारत भी कबूल की और फाकुल मदारिस की सदारत भी कबूल की, ये बड़ा इनका करम है और बड़ा एहतराम है। अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में उम्रों में बरकत फरमा, मेरे दिल से इनके लिए कोई दिन खाली नहीं जाता जब दुआ नहीं करता, मैं रोज़ दुआ करता इनको देखता हूँ तो दिल से दुआएं निकलती रहती है, आते हैं मेरे पास रोज़ाना, इनकी मोहब्बत की बात है, मेरी इबादत के लिए रोज़ आ रहा था तकरीबन, तो जब मैं इनको देखता हूँ आता जाता हूँ तो इनके लिए दुआ करता हूँ, या अल्लाह इनकी सेहत की भी हिफाजत फरमा, या अल्लाह इनके जान की भी हिफाजत फरमा, या अल्लाह इनकी जामियत की भी हिफाजत फरमा, इनके कारनामों की भी हिफाजत फरमा, इनकी किताबों की तसानीफ की हिफाजत फरमा, बहुत दुआ करता हूँ और हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह। मुबारक हो, मैं आप हज़रात को भी मुबारकबाद देता हूँ कि फाकुल मदारिस की सदारत और निज़ामत अल्लाह ताला ने इन अज़ीम शख्सियत को अता फरमाई। वा आख़िरु दावाना आगे बस भाई दुआ आपका राज, दुआ आपका राज।
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم
انك درس قران.com www.darsquran.com